with the blessings of all the assembled devotees, all senior devotees, and Srila Prabhupada, we would like to begin the program, class. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari,
Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari,
Jaya Radha Madhava. श्रीहरि नाम संकीर्तन यज्ञ की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, all the assembled Vaishnavas, also to my mother. So we would be continuing with Damodar Ashtakam discussion, which we had done 2 weeks before. So I had taken one verse and could not complete other verses. So we will try to complete 7 balance verses which are there. So can I just know that who were not present in the class which I gave on first verse? आप लोगों में से कितने लोग नहीं थे जब मैंने पहला जो श्लोक है उसके ऊपर चर्चा की थी? अच्छा, मतलब कुछ लोग नहीं थे. तो हम आगे के जो 7 वर्ष है श्लोक है उसके ऊपर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, प्रयत्न करेंगे. तो ये क्लास इसके पीछे पीछे दोहराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम वैसे भी दामोदर अष्टकम गाने वाले हैं. तो सिर्फ मैं एक वर्ष पढ़ूंगा, उसके बाद उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे. तो ये दामोदर अष्टकम की रचना जो है वो पद्म पुराण में आई है, जैसा हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था. और सत्यव्रत मुनि द्वारा ये रचित है और इसको भुजंग प्रायता भी कहा जाता है, अर्थात ये सर्प की तरह चलता है, कभी स्वर ऊपर जाता है कभी नीचे आता है. और श्री हरिभक्त विलास में कहा गया है कि कार्तिक मास में भगवान दामोदर की पूजा करनी चाहिए तथा प्रतिदिन दामोदर अष्टकम प्रार्थना गानी चाहिए, जिसे सत्यव्रत मुनि ने बताया है और जिससे भगवान दामोदर आकर्षित होते हैं. तो हमारा जो कथा करने का तात्पर्य है वो भी यही है कि हम भगवान के चित्त को आकर्षित करना चाहते हैं. So there are two purpose. One is we want purification of our heart and we want to attract heart of Lord Shri Krishna. इसके अलावा हमारा और कोई उद्देश्य नहीं रहता भगवान की कथा करने के लिए. तो पहला वर्ष इस तरह से जाता है, नमामि शरम सच्चिदानंद रूपम लसत कुंडलम गोकुले व्रजमानम यशोदाभियोलुखलाधवमानम परामृष्टमत्यंत तो तृत्य गोप्या. तो सिर्फ 2-5 मिनट के लिए जो लोग नहीं थे उनके वाले के लिए हम वापस रिपीट करेंगे कि इसमें सत्यव्रत मुनि सबसे पहले भगवान को कहते हैं नमामि. नमामि अर्थात मैं आपको प्रणाम करता हूँ. और किसको प्रणाम कर रहे हैं? नमामि ईश्वरम. ईश्वरम मतलब मैं भगवान को प्रणाम कर रहा हूँ. और ये ईश्वर शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है. तो आगे के 7 श्लोक भी हम अगर गाएंगे तो हर श्लोक के साथ हमको ईश्वर लगाना नहीं भूलना है, नहीं तो ईश्वर का नाम सुन के कई लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे मैं भी ईश्वर हूँ, मेरा नाम भी ईश्वर है. और कोई लोग सोचेंगे कि जो दामोदर लीला में भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, माता पीछे पीछे भाग रही है, भगवान उनके डर से भागे फिर माता ने पकड़ लिया, तो ऐसा सोच के कोई जान सकता है कि कहीं मेरे बारे में तो नहीं कह रहे हैं, मैं भी बचपन में ऐसा करता था. तो सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं नहीं जी, ये ईश्वर के बारे में चर्चा हो रही है और वो ईश्वर जिनका सच्चिदानंद रूप है. तो भगवान के कई रूप है, उसमें से जो मुख्य रूप है वो सच्चिदानंद रूप है और उनके दूसरे गौण रूप है. तो लसत कुंडलम का जो अर्थात उसका मीनिंग ये है जो सनातन गोस्वामी ने बताया है कि लसत कुंडलम मतलब कि भगवान को अपना शरीर आकर्षित करने के लिए आभूषण की आवश्यकता नहीं पड़ती है. हमको हमारा शरीर अगर सुशोभित करना है तो आभूषण लगते हैं. तो कोई सोचेगा कि लसत कुंडलम का क्या अर्थात है, भगवान को आभूषण लगते हैं क्या? तो बोले नहीं जी, कि भगवान का जो अंग है वो भूषण को भी भूषण कर देता है. भूषणम भूषणांगम परम पदम भूषण भूषणांगम. तो कुंडल का भगवान के जुड़ने से भगवान का शरीर का शोभा नहीं बढ़ रही है, लेकिन कुंडल का जीवन जो है वो चरितार्थ हो रहा है. तो उसी प्रकार सनातन गोस्वामी कहते हैं कि येन केन प्रकारेण, अगर जीव भगवान से जुड़ जाए तो हमारा जीवन जो है वो भी धन्य हो सकता है, जिस तरह कुंडल का हुआ है जब वो भगवान के कान में लगा. तो कोई अगर कान की बाली पहनता है तो लोग उसको कहते हैं कि अरे देखो ये बाली कितनी सुंदर लग रही है, इस कान ने कितनी सुंदर बाली धारण की है. लेकिन जब लसत कुंडलम आता है तो सनातन गोस्वामी कहते हैं कि लसत कुंडलम का मतलब है कि कोई कान से ये कहेगा, कुंडल से ये कहेगा कि हे कुंडल तूने क्या कान धारण किया है, मतलब भगवान का कान उसके अंदर तो लगा है तो तेरा जीवन धन्य है. फिर आगे कहता है यशोदा भियोलुख लाधव मानम, कि मतलब यशोदा के भय से क्या कर रहे हैं, भगवान भाग रहे हैं। वह भगवान जिनके भय से मूर्तिमान भय भागता है, वह भगवान क्या कर रहे हैं, अपने भक्त के भय से भाग रहे हैं, और भाग ही नहीं रहे हैं। भागते भागते क्या हुआ, परामृष्टम अत्यंत तो दृत्य गोपिया, अत्यंत तो दृत्य गोपिया, मतलब उस गोपी ने, उस यशोदा माँ ने भागते भागते भगवान को हरा दिया, पछाड़ दिया, उससे तेज भाग गई। तो सनातन गोस्वामी पाद अपने तात्पर्य में लिखते हैं, और ये जो लेक्चर में बोल रहा हूँ ये गौरांग प्रभु ने पहले दिया था, तो गौरांग प्रभु उसमें समझाते हैं कि भागते भागते क्या हुआ, भगवान हार गए। तो भक्त में और भगवान में रेस लगी है, और भक्त से भगवान हार गए। तो बोले इससे हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि कभी भी हारने में हमको आनंद का अनुभव करना चाहिए, क्योंकि भगवान जब भक्तों से हारते हैं तो वो आनंद का अनुभव करते हैं, लेकिन जब हम भागते हैं तो हम क्या करते हैं, कॉम्पिटिशन करते हैं, एक दूसरे से कॉम्पिटिशन करते हैं। तो कहते हैं कि भक्तों के बीच में इस तरह का कॉम्पिटिशन नहीं होना चाहिए। एक तरह का कॉम्पिटिशन ठीक है, हो सकता है कि देखो मैंने कितना अच्छा भगवान के लिए सेवा कर रहा हूँ, और इस तरह की मैं सेवा करूँ कि मेरी सेवा देखकर दूसरे भक्त भी उत्साहित हो और सेवा करे, या मेरे कुछ करने से भक्तों को चांस मिले कि वो और अच्छे भगवान की सेवा करे, इस तरह से हमको कुछ करना चाहिए। जैसे अभी दामोदर का महीना चल रहा है, कार्तिक महीने में हम सभी लोगों के घर पे दामोदर आरती करने के लिए जा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा भगवान की दया से हमको रिस्पॉन्स मिल रहा है, जा रहे हैं। तो एक भक्त जाता है, दूसरा भक्त को भी उत्साह मिलता है, कह रहे देखो मैं भी जाता हूँ, मैं भी आरती करता हूँ, या मैं कम से कम वो भक्त जो भगवान की सेवा करने की कोशिश कर रहे हैं उनको असिस्ट करता हूँ किसी भी वे में। तो इस तरह से अगर हम करेंगे तो वो हमारे जीवन के लिए अच्छा है, लेकिन नहीं तो अगर भक्तों के समाज में अगर हम ये करेंगे कि नहीं हमको दूसरे भक्तों को गिराकर ऊपर उठना है, तो ये अच्छा नहीं रहेगा। नहीं तो हम क्या करते हैं, इस समाज के अंदर हमको यही शिक्षा प्रणाली दी गई है और कहा गया है कि देखो अगर तुमको जीवन में नंबर वन बनना है तो दूसरों को पछाड़ कर नंबर वन बनना है, सबको पीछे, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कॉम्पिटिटिव स्पिरिट यही है कि सबको मैं पीछे कर दूँ। और वो कहते हैं कि भागू तो ऐसा भागू कि कोई दूर दूर भी दिखाई देगा तो डर लगता है कहीं मेरे से आगे भाग के निकल जाएगा, एकदम कोई नहीं दिखाई दे तो अच्छा है, और कभी कोई भागते भागते आगे चले जाता है तो हमारी इच्छा होती है कि कैसे उसको पकड़ के पीछे खींचूं और आगे निकल जाऊं। तो केकड़े जो होते हैं वो यही करते हैं कि केकड़े को अगर पकड़ डब्बे में डाल दो तो एक भी केकड़ा बाहर नहीं आता है, क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे की टांग खींच के उसको नीचे गिरा देते हैं। लेकिन भक्त जो होते हैं वो क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं दूसरे भक्तों को आगे बढ़ने के लिए कि भाई चलो मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं एक भूमिका बनाता हूँ कि जिस भूमिका पे आप अपने भक्ति के अंदर आगे बढ़ सको, और किसी भक्त को भक्ति में आगे बढ़ता हुआ देखकर हमें प्रसन्नता होनी चाहिए। ये बहुत बड़ी हमारे लिए परीक्षा है, नहीं तो क्या होता है कि तुरंत कोई भक्त हमसे आगे चला गया तो हमें ईर्ष्या होने लगती है कि अरे मैं तो 15 साल से मूवमेंट में हूँ, ये तो 5 साल हुआ आया, ये आगे कैसे निकल गया, भगवान तूने बराबर टाइम नोट नहीं किया क्या, डेट नोट नहीं किया, मैं पहले आया था, मैं सीनियर हूँ। तो मेरे एक दोस्त है कृष्ण गोपाल प्रभु, मुझसे बहुत साल पहले कहा था कि इस्कॉन में कोई सीनियर जूनियर नहीं होता, खाली सिंसियर और अनसिंसियर होता है, कि एक व्यक्ति सिंसियर और अनसिंसियर है वही उसकी परीक्षा है। तो दूसरों को भक्ति में आगे बढ़कर हमें खुशी होनी चाहिए, और हमें ऐसा कार्य करना चाहिए कोऑपरेट होके कि चलो भाई आप कर रहे हो भक्ति, मैं ऐसा कुछ करूं कि आप और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, इस तरह की हमें अभिलाषा रखनी चाहिए। तो भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं कि भगवान हार गए, भगवान को कोई नहीं हरा सकता, लेकिन भगवान हार गए, इसलिए वारांग प्रभु जब आए थे यहीं पे बैठ कर उन्होंने कहा था कि भक्ति इज आर्ट एंड साइंस ऑफ बीइंग डिफीटेड, कि भक्ति के अंदर पराजय होकर ही हमको, हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो इस वर्ष में हमने बहुत लंबी चर्चा की थी, हम इसके ऊपर इतना और आगे नहीं बोलेंगे। तो दूसरा जो है, दूसरा जो श्लोक है वो ऐसा इस तरह आता है, रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मं रिजंतम करां भोज युग्मेन सांतं कनेत्रम मुहुश्वासकं पत्रीरेखांक कंठ स्थित ग्रैव दामोदरं भक्तिबद्धं। तो सत्यव्रत मुनि आगे कह रहे हैं रुदंतम, रुदंतम मतलब भगवान रो रहे हैं, कृष्ण भगवान रो रहे हैं, जो परम नियंता है वे भगवान अब रोने लगे। तो भगवान कभी रोते नहीं है, लेकिन यहां पर यह वर्णन आ रहा है कि भगवान रो रहे हैं, वो भी भय से रो रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, मृजंतम मतलब वो क्या कर रहे हैं, ही इज रबिंग हिज आईज, वो अपने आप को मल रहे हैं, और रो रहे हैं और रोते रोते कराम भोज कर मतलब होता है हाथ, कराम भोज युग्मे न स अंतक नेत्रम, तो कहे कि इतने रो रहे हैं कि रोने मात्र से क्या हो रहा है कि उनकी सांस नहीं रुक रही है, वो जोर जोर से सांस ले रहे हैं। जैसे हमने देखा है कोई बच्चा होता है जब बहुत जोर से चीख मार के रोता है धारते हुए तो बहुत ऊपर नीचे उसकी सांस होती है, इस तरह से वो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान ने देखा कि मैया एक लकड़ी लेके आई है और उन्हें दंडित करने वाली है। अब वो छोटी सी लकड़ी को देख के भगवान डर गए, तो इसके लिए जब उन्होंने ईश्वर कहा तो हमें समझना चाहिए कि ये भाई किसके बारे में बात हो रही है ना। ऐसे साधारण बच्चे डर जाते हैं किसी का लकड़ी देख के या किसी का मुंह देख के बच्चे डर जाते हैं। कभी कभी हम किसी के घर जाते हैं, छोटा बच्चा होता है गोदी में लेने जाते हैं, हमको देख के बच्चा रोने लगता है। तो भगवान रो रहे हैं, कराम भोज युग में ना सातंक नेत्रम। तो सातंक नेत्रम देखो इतना अच्छा वर्णन आया है, और भगवान ने क्या कहा कि उनके नेत्र जो थे वो लाल लाल हो गए थे, और कैसे हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि नेत्रों के अंदर आतंक मचा हुआ है। तो संस्कृत जो है वो एक विशेष भाषा है और उसमें कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं। जैसे एक शब्द होता है भय, भय मतलब डर, जैसे कुछ किसी को किसी चीज का भय है, और अगर भय की चरम सीमा है आतंक। तो जैसे कोई कहेगा कि भय, तो भय का जैसे एग्जांपल अगर दिया जाए तो कोई कहेगा कि देखो आतंकवादी आ गए हैं हमारे गांव में, तो आतंकवादियों का नाम सुनकर क्या होता है, डर लगता है, भय पैदा होता है। या कोई कह दे कि जंगल से शेर निकल गया है और हमारे इलाके में आया है तो डर लगता है, अरे शेर आ गया शेर आ गया शेर आ गया, शेर आया है ये जान के डर लगता है, सतर्क रहने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं कि अगर शेर आया है थोड़ा बच के रहना चाहिए, भय है हर किसी को, अरे कहीं कभी भी आके शेर मुझे पकड़ लेगा। तो ये हुआ भय। और आतंक मतलब क्या, आतंक मतलब वो कि जब हम रास्ते में जा रहे हैं और वो शेर सीधा हमारे सामने आ गया, तो उस शेर को सामने देख के जो सुना था शेर के बारे में कि छूट गया है, वो भय हमको होता है, लेकिन उसको सामने बिल्कुल देखकर जो हमारे मन में भाव पैदा होता है उसको आतंक कहते हैं। इसके लिए उनको आतंकवादी कहते हैं कि वो आके बातें नहीं करते, सीधा गोली मारते हैं, उड़ा देते हैं। आतंकवादियों का बात करने का टाइम नहीं रहता उनके पास, वो आते हैं और सीधा उड़ाने लगते हैं। तो इतना आतंक हो गया है कि वो उस तरह के आतंक में है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति जंगल में से जा रहा था, उसके सामने शेर आ गया। तो शेर आ गया तो उसने उससे शेर से बचने की कोशिश की, तो उसने बोला कि क्या करूं। तो उसने शेर को कहा कि देखो शेर, मैं तो बूढ़ा हूं, तुम बूढ़े का खून क्यों पीना चाहते हो, तुम जाओ किसी जवान को मारो, जवान का खून पियो, मेरे बूढ़े का जिसमें खाली हड्डी बची है, मांस खून कुछ है नहीं ज्यादा, इतना हमारा ठंडा खून पी के क्या तुमको मिलेगा, यू शुड गो एंड ड्रिंक हॉट मिल्क, तो फिर हॉट ब्लड, हॉट ब्लड। तो शेर भी बहुत चतुर था, उसने कहा टुडे आई एम इन द मूड ऑफ ड्रिंकिंग कोल्ड ड्रिंक कोल्ड ब्लड, ऐसा करके उसको खा गया। तो कितना भी बचने की कोशिश करो, एक और दूसरा जोक है जो इस्कॉन में बहुत फेमस है, एक व्यक्ति जा रहा था सामने शेर आ गया, तो डिवोटी था कुछ गलत तो नहीं कर सकता था शेर का, तो एक जो भक्त था उसकी क्या आशा रहती है कि सब लोग भक्त बन जाए एटलीस्ट थियोरेटिकली। तो उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान इस शेर को भक्त बना लो। तो क्या हुआ, शेर तुरंत भक्त बन गया, तुरंत उसके तिलक आ गया, कंठी माला आ गई, एकदम डिवोटी के वस्त्र धारण करके, और शेर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और कहने लगा महाप्रसाद गोविंदे। तो मृत्यु से बचा नहीं जा सकता है। तो आतंक, अगर शेर हमारे सामने आ जाए तो उस तरह का आतंक हो रहा है भगवान के नेत्रों में। तो इसके लिए ये जो आतंक शब्द आया है, और मुंह श्वास कंप, कंप मतलब वो शिवरिंग हो रहा है, उनका श्वास ऊपर नीचे जा रही है, मुंह श्वास कंप त्रिरेखांक कंटक, उनका जो जो गला है वो कैसा है, वो एक कॉन्शल के समान है जिसमें तीन लकीरें होती है, स्थित ग्रैव दामोदरम भक्तिबद्धम। तो वे किससे बंध रहे हैं, केवल भक्ति से बनते हैं। तो रिश्ता माई ने क्या किया, बहुत सारी रस्सी लेकर आ गई और उन्हें बांधने का प्रयास करने लगी, और हमें लीला पता है कि माता यशोदा गाय को बांधने की रस्सी लेके आई, और भगवान कृष्ण को जब बांधने जाती थी और जब गांठ लगाने जाती थी तो 2 इंच 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी, फिर दूसरी रस्सी लेके आई, फिर उसको जोड़ी, फिर गांठ मारने गई 2 इंच छोटी पड़ गई, फिर तीसरी रस्सी, ऐसे करते करते बहुत सारी जो रस्सियां थी वो लाने लगी, और गोपी लोग भी आ गए, वो भी अपनी रस्सियां देने लगे, भगवान बंध नहीं पा रहे हैं। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और माता बहुत परिश्रम करके थक गई। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो हमारे आचार्य है वो बताते हैं कि ये जो 2 अंगुल है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक उंगुल है भक्त का प्रयास और दूसरा है भगवान की कृपा, इन दोनों का जब समन्वय होता है तो भगवान बंध पाते हैं। तो फिर जब माता को इतना परिश्रम करते हुए देखा तो भागवत में वर्णन आता है कि भगवान कृष्ण को थोड़ा दया आ गई, बोला अरे मेरी माँ इतना प्रयास कर रही है, 9 लाख गायों की लस्सी रस्सी लेके आई है फिर भी बांध नहीं पा रही है। तो फिर बोला ठीक है मैं बंध जाता हूँ। तो बंध गए तो बांध के फिर यशोदा मैया अपना अंदर चले गए अपना काम करने के लिए, और कृष्ण वहां खड़े थे बंधे हुए। तो सारी उनकी टोली आ गई खेलने के लिए उनके साथ, और देखा कि हमारा लीडर यहाँ पे बंधा पड़ा है। तो सब लोग बोलने लगे अरे कृष्ण तुम कैसे बंध गए? तो बोले अरे हंसो मत, जाके मेरे को छुड़ाओ। तो फिर बलराम जी आगे आए और कहने लगे कि मैं जाके मैया को बताता हूँ तुम कौन और तुमको छुड़ाता हूँ। और वो जाके कहने लगे कि मैया तुम जानती हो कृष्ण कौन है? बोला कौन है? बोला अरे वो परम नियंता है, सभी के श्रोत्र है, भगवान जो है वो परम कारणों के कारण है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण, आपने उसको बांध दिया, वो परम नियंता है, सारा जो भौतिक संसार और आध्यात्मिक जगत जो है वो उन्हीं से उत्पन्न होता है, भगवान ये है वो है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे। और माने का अच्छा तू कौन है? तो बोला मैं बलराम हूँ, मैं भगवान का पहला अवतार हूँ, सारे दूसरे अवतार मुझे से आते हैं, मैं अनिरुद्ध हूँ, संकर्षण हूँ, वासुदेव हूँ, प्रद्युम्न हूँ, मैं शेष नाम हूँ जिस पर धरती टिके रहती है, सारे अवतारों का उद्गम स्रोत हूँ। तो माँ को गुस्सा आ गया, बोला अच्छा क्या सारे अवतारों को मेरे घर में पैदा होना था क्या? तो भाग इधर से, तेरे को ही बांध दूंगे। जाके कृष्ण को बोलने लगे कि मैंने प्रयास किया लेकिन सफलता हाथ नहीं लगी। भगवान बोले कि कम से कम प्रयास कर, एंडेवर वही देखता हूं मैं, सफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है। तो बाद में क्या हुआ कि माता ने फिर उसको बांध दिया। और जननिवास प्रभु वो एक ऐसी घटना बता रहे थे एक बार, वो कहे कि माता यशोदा जब उनको बांधने की कोशिश कर रही थी तो कृष्ण बंधे नहीं जा रहे थे, लेकिन कृष्ण को बांधने के लिए बहुत सारे गोपी गोपर सब आ गए थे, सब ये तमाशा देख रहे थे कि क्या हो रहा है, देखो भगवान को आज सजा मिलनी चाहिए। कभी कभी हमको बड़ा मजा आता है किसी को सजा मिलती है तो, कि बराबर हुआ इसको ऐसे ही होना चाहिए। तो आ गए तो राधा रानी भी वहां पे खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी, तो बंद नहीं रहे थे। तो यशोदा माता ने क्या किया, राधा रानी के बालों में जो रिबन होता है फीता वो लेके उसको गांठ से जोड़ा और फिर वो बंद गए। तो कृष्ण बोले अब तो बंधना ही पड़ेगा हमको। तो इसके लिए तो ये जननिवास प्रभु बता रहे थे, तो बताता है कि भगवान अल्टीमेटली कैसे बंध गए, प्रेम के बंधन में बंध गए, अन्यथा भगवान को बांधना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है, कोई नहीं बांध सकता, लेकिन भगवान सिर्फ प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं। और ये प्रेम का बंधन इतना शक्तिशाली बंधन है कि इसको कोई छुड़ा नहीं सकता। और हम जो है भगवान क्या करते हैं, अपने भक्तों के प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, लेकिन हम जो है वो किसी के बंधन में बंधना नहीं चाहते। कई बार हमको ऐसा लगता है कि मैं क्यों बंधू इसके बंधन में, इसको बांधूंगा मैं तो हमारी वो। और अगर हम किसी के बंधन में आते भी है तो अगर बंधने के बाद भी उनको नियंत्रित करना चाहते हैं, यू नो वी वांट टू कंट्रोल अदर पीपल, अदर फेलो डिवोटीज और अदर यू नो एनी रिलेशंस वी हैव, वी वांट टू बिकम कंट्रोलर, हम नियंता बनना चाहते हैं, हम उनको कंट्रोल करना चाहते हैं। और भगवान यहाँ पर इतना साहस कर रहे हैं और कहते हैं कि आओ तुम मुझे बांध दो, उन्होंने छूट रखी है, ये डिस्काउंट दिया, बोला ठीक है अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो तो तुम्हारे प्रेम के बंधन में मैं बंधना स्वीकार करूंगा। और भगवान जो है वो क्या है, परम नियंता है। और भगवान के आध्यात्मिक जगत में कैसी कैसी लीला हो रही है कि वहां पर जो कुछ भी भगवान चाहते हैं चुटकी बजाते ही सब कुछ पूरा हो जाता है। भगवान को कई बार इच्छा करनी भी नहीं पड़ती है और उनकी इच्छा करने मात्र पहले से ही सब कुछ वहां पे पूरा हो जाता है। तो इतना मतलब भगवान की नित्य लीला चल रही है और सारे उनके सेवक जो है वो क्या क्या अपने काम में निपुण और पटु है, एकदम एक्सपर्ट, जैसा जो करना है। यहाँ पे कई बार क्या है कि हमको बहुत कुछ कई बार प्रैक्टिस करना पड़ता है और तब जाके थोड़ा बहुत परफेक्शन आता है और हम लोग को लगता है हम लोग तो बहुत बड़ा परफेक्ट आदमी बन गया, लेकिन वहां पर भगवान के धाम में सभी लोग परफेक्ट है और एग्जैक्टली जानते हैं कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देनी है, कैसे उनको खुश करना है, क्या करना है, सब कुछ जानते हैं। तो इतना सब जान के फिर भगवान को कई बार ऐसा लगता है कि मजा नहीं आ रहा है। तो इसके लिए भगवान क्या करते हैं कि अपना वो गोलोक धाम को छोड़ के वो कचरे की पेटी में आते हैं ताकि जहां पर कुछ संघर्ष हो सके, जहां पर थोड़ा भक्त लोग जो है वो उनको बांध सके। और भगवान कहते हैं कि देखो मैं गोलोक धाम छोड़ के आपके पास इसीलिए आ रहा हूँ और मैं यही इच्छा कर रहा हूँ कि कभी मेरे भक्तगण मुझे अपने प्रेम के बंधन में बांधेंगे। तो इतना भगवान आ रहे हैं और हमको ये अपनी छूट दे रहे हैं। तो ये प्रेम का जो रज्जु है ये बहुत शक्तिशाली होता है और सामान्य व्यक्ति जो है वो कल्पना भी नहीं कर सकता कि कैसे भगवान जो परम नियंता है किसी से बंध सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्या है, हम लोग खुद बद्ध जीव है, तीन गुणों से, तीन रस्सी से बंधे हुए, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण से, तो हम समझ ही नहीं पाते। इसलिए ऐसे भौतिक जगत में कलयुग में विशेष कर से जड़ मति वाले जो बुद्धियों के जो मूर्ख व्यक्ति लोग है उनका उनको बताने के लिए भगवान थोड़ा बहुत एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, और वो आते हैं कि देखो मैं आके तुम्हारे सामने ऐसा कुछ परम लीला कर रहा हूँ, और यदि कोई प्रोडक्ट का ज्ञान नहीं होता तो क्या करना पड़ता है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है ताकि उसका मार्केट बने। तो भगवान भी क्या करते हैं, आके एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो ये तीसरे श्लोक में सत्यव्रत मुनि बता रहे हैं कि भगवान किस तरह से एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो कहते हैं इति दृक्ष्वलीला भीरानंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं तदीयेषितग्नेषु भक्तिर्जितैत्वं पुनः प्रेमतस्तं शतावृति वन्दे। तो कहते हैं इति दृक्ष्वलीला भीर आनंद कुंडे स्वघोषं निमज्जन्तं आख्यापयन्तं। आख्यापयन्तं मतलब एडवर्टाइजमेंट। भगवान क्या कर रहे हैं, ये जो दामोदर लीला है ये क्या है, ये गोलोक धाम का एडवर्टाइजमेंट कैंपेन है। और भगवान बता रहे हैं कि देखो कैसी कैसी लीला गोलोक धाम में हो रही है, और इस तरह का एडवर्टाइजमेंट देख के लोग आकर्षित होते हैं। तो कोई प्रोडक्ट को बेचना होता है तो लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, और उस एडवर्टाइजमेंट को देख के या पिक्चर के ट्रेलर को देख के हम लोग बहुत आकर्षित हो जाते हैं, अरे पिक्चर में बहुत कुछ जबरदस्त रहेगा, और ट्रेलर में क्या अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं बीच बीच में। तो इस तरह से एक बार एक व्यक्ति मरा और उसको भेजा गया ऊपर, ऊपर जाके यमदूतों से मिला जो वहां पे बैठे थे सबसे, और उन्होंने सब उनको अलग अलग बताया कि हेल क्या है और स्वर्ग क्या है, सबका उन्होंने कुछ दिया। तो देखा कि बहुत जगह पे लोगों को यातनाएं दी जा रही है, तो उसने सोचा कि हाँ ये तो नर्क है, मुझे नर्क में नहीं जाना। फिर उसको स्वर्ग का बताया गया, तो स्वर्ग में क्या देखा कि सब लोग बहुत एकदम अच्छी तरह से बैठ के नो खा पी रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो बोला कि मेरे को यहाँ पे जाना है, तो उसको वहां पे एंट्री दी गई। लेकिन अंदर गए तो देखा कि सिचुएशन कुछ और ही था, अलग तरह से बहुत तरह से यातनाएं दी थी, मारा जा रहा था। तो उसने कहा रे मेरे साथ धोखा हुआ है, ये क्या किया तुमने, कुछ और दिखाया और कहीं और भेज दिया मेरे को। तो फिर यमदूत उसको बोले कि वो हमारा एडवर्टाइजमेंट कैंपेन था लोगों को नर्क में भेजने के लिए, हम लोग भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं भाई, हमारे पास भी, तो इसके लिए एडवर्टाइजमेंट करके छोटा एकदम स्टार लगा देते हैं। भगवान ऐसे कोई स्टार नहीं लगाते हैं, और उसके नीचे भगवान स्टार लगाते हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे। तो कहते हैं इति दृक्ष्वलीला, ये भगवान जो है वो अपनी लीला करते हैं और क्या करते हैं, लोगों को आनंद के कुंड में डुबोते हैं। तो हम लोग सब आनंद की खोज में भटक रहे हैं इधर उधर, और आनंद खोजते खोजते हम लोग अबू धाबी में आ गए, फिर भी आनंद नहीं मिल रहा है, सोचते आनंद किधर चला गया, आज सत्संग में आया नहीं, कहीं बाहर ही है, कहीं घूम रहा है। तो आनंद की खोज में आ गए, फिर यहां से हम और आगे कनाडा जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, और आनंद के लिए भटक रहे हैं। लेकिन भगवान की जो आनंद है इसमें भगवान जब डुबाते हैं तो कोई उठ नहीं पाता, इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी बताते हैं तारुण्यामृत पारावार तरंग लावण्य सार तट के आवर्त भावो तट के आवर्त भावोद्गम वंशी ध्वनि चक्रवात नारिर मन तृण पात ताह के डुबाए नावद्गम। वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का यौवन जो है वो आनंद के सागर के तुल्य है, और उनका जो रूप है ब्यूटी वो क्या है, लाइक वेव्स, तरंग है, वो तरंग है भगवान की जो ब्यूटी है वो। और आवर्त, आवर्त मतलब उसमें भौरा चलते रहता है, भाव उत्पन्न होते हैं। तो भाव कैसे उत्पन्न होते हैं कि भगवान का वेणुवादन होता है और उसमें से भाव पैदा होते हैं, उनका वेणुवादन चक्रवात की तरह है। और चक्रवात क्या करता है, घास फूस को ऊपर उठा लेता है, लेकिन जो पत्थर होते हैं वो वहीं पे बैठे रहते हैं। तो गोपियों का मन जो था वो भगवान के साथ उठ गया, क्योंकि घास फूस के जैसा था, हल्का था, लेकिन हमारे पे कुछ असर ही नहीं पड़ा क्योंकि पत्थर के बने हुए, पत्थर उठता नहीं है जब हवा चलती है, तो बवंडर आता है तो पत्थर को कुछ असर नहीं होता है। तो हम लोग कभी सोचते हैं और ये इच्छा करते हैं कि अरे कभी वो दिन आएगा जब मैं भगवान कृष्ण की वंशी सुन पाऊंगा, भगवान का वेणुवादन सुनूंगा, कब वो दिन आएगा, हमेशा सोचते रहते हैं। तो बलराम रूप बता रहे थे कि वेणुवादन बहुत दूर की बात है, पहले घड़ी का अलार्म सुनना पड़ता है, और जब अलार्म मीठा लगने लगे तब समझ जाएगा कि हाँ अभी कृष्ण का वेणुवादन भी मीठा लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि हमारी सिचुएशन ऐसी है कि बाय चांस भगवान की कृपा से अगर वंशी बज भी गई रात को, तो पहला क्वेश्चन पूछेंगे रात को क्यों बजाया, 12-1 बजे क्यों बजाया, अभी तो मैं सोया था, जस्ट सोया था, मीठी नींद लगी थी, इसके बीच में वेणुवादन क्यों किया। भगवान मैं तुमको बताऊंगा कभी वंशी बजाने का, जब भी मैं फ्री रहता हूँ, मेरे फ्री टाइम में वंशी बजाओ, दौड़ के आऊंगा। तो ऐसी हमारी इच्छा रहती है कि, तो कई बार क्या होता है कि सेवा जब कोई भक्त देता है तो कई बार हमको बहुत पत्थर के ऐसा लगता है कि यार ये सेवा क्यों दे रहा है अभी, इसको मालूम नहीं मैं कितना थका हुआ हूँ, मैंने कितनी ऑलरेडी सेवा की है। तो इसके लिए हमारी जो सिचुएशन है वो कुछ अलग है, तो हम चाहते बहुत कुछ है, चाहते हैं कि भगवान का वेणुवादन सुनाई दे, लेकिन हम वैसे अपने आप को अब तक बना नहीं पाए हैं। तो कई बार क्या होता है कि भगवान अगर बार बार बंसी बजाएंगे तो कई बार हमको तकलीफ हो जाएगी, बोलेगी क्यों बार बार बजा रहे हैं ना। कई बार ऐसा लगता है कि अरे क्यों बार बार वो का वही भजन गा रहे हो, क्यों बार बार वही लेक्चर दे रहे हो, वही चीज सुना रहे हो, इतना बार सुन सुन के पक गया मैं, कितनी बार सुनू मैं, कितनी बार ये चीज। तो बोले इतना क्यों बंसी बजा रहे हो भगवान, थोड़ा बंद करो, बहुत हो गया तुम्हारा बंसी। तो हमारा जो लेवल है हमको समझना चाहिए कि किधर है, हम लोग उस लेवल पे गए नहीं है। तो इस प्रकार क्या है कि पत्थर की तरह हमारा मन है, नाना प्रकार से भारी है अनर्थों से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब से भर के हमारे दिल पे क्या हुआ है, एक एंकर डाला हुआ है, लंगर डाला है, और उसकी वजह से वो पत्थर ऊपर ही नहीं उठ पा रहे हैं। इसके लिए हमको क्या करना है कि हमारा जो हृदय है उसको तृण के भांति बनाना है, हल्का बनाना है, ताकि जब बंसी बजे भी तो वो तृण उड़ जाए, वो जब बाउंडर आएगा। इसके लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है, तृणादपि सुनिचे न तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, के तृण से भी तुच्छ अपने आप को समझना है, एक वृक्ष से भी सहनशीलता हमको लानी है, और दूसरों को बहुत मान देना है और मान की अपेक्षा न करनी है। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम भगवान का कीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो एक बार महाराज से लेक्चर में मैंने सुना था और SMS भी किया था कुछ भक्तों को, महाराज उसमें कहते हैं कि यू कैन थिंक योर सेल्फ ग्रेट, यू कैन गो ऑन थिंकिंग योर सेल्फ ग्रेट टिल द टाइम यू सी दैट ऑल द फेलो डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड आर गोइंग बैक होम बैक टू गॉड हेड व्हाइल यू रिमेन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड ओनली। तो इसके लिए बहुत आवश्यक है हमको, नहीं तो हमको क्या लगता है कि ये जो आनंद का कुंड है वो हमको एकदम कीचड़ के समान लगता है, हम उसको सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो कैसी कैसी लीला मैं कर रहा हूं, आख्या पयंतम और तदीश तदीयेशी तज्ञेशु भक्तिर जीते त्वम। तो उन्होंने वो स्टार मार के रखा है, एडवर्टीजमेंट किया है, और कोई पिक्चर का जब ट्रेलर आता है और पिक्चर का नाम भी देते हैं उसके साथ, ठीक है ना। तो भगवान ने वहां पर एक बिलबोर्ड लगाया है और उस बिलबोर्ड में भगवान क्या कह रहे हैं, भक्तिर जीते त्वम, मैं किससे जीता जा सकता हूं, केवल भक्ति से। इफ यू वॉन्ट टू विन मी द लॉर्ड इज रेडी बट ओनली बाय डिवोशनल सर्विस, ओनली बाय डूइंग सर्विस विथ डिवोशन, डिवोशनल सर्विस वी कैन विन द लॉर्ड, अदरवाइज देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे, देर इज नो अदर वे। इसलिए भगवान कहते हैं कि आख्यापयंतम तदीयेषि तज्ञेषु भक्तिर जीते त्वम पुनः प्रेम तस्तम शतावृत्ति वंदे, शतावृत्ति मतलब 100 times। तो कहते हैं कि मैं केवल भक्ति से पराजित होता हूं और मेरा ये पिक्चर का नाम है भक्ति जीते त्वम, मतलब ये मेरा बिलबोर्ड लगा हुआ है कि मैं भक्ति से जीता जाता हूं। तो इस तरह से भगवान विज्ञापन कर रहे हैं। तो फिर आगे के श्लोकों में सत्यव्रत मुनि भगवान से कुछ वर मांग रहे हैं, 2 श्लोकों में वो कहते हैं कि अभी मैं आपसे वर मांगता हूँ, देखो मेरी अवस्था देखो, आप इतनी अच्छी अच्छी लीला कर रहे हो लेकिन अभी भी मेरी कंडीशन जो है वो उतना प्योर लेवल पर आई नहीं है, तो अभी भी मैं आपसे कुछ मांगता हूँ, तो कुछ मेरे को दीजिए। तो क्या मांग रहे हैं, वरम देव मोक्षम न मोक्षम वधिम वा न चान्यम वृणेहम वरेषदपिह इदं ते वपुर्नात गोपाल बालम सदा मे मनस्या वीरास्तम की मन्ये। वो कहते हैं वरम देव, कि हे देव तो आप मुझे क्या दो, मुझे वर दो। लेकिन वर भी कैसे मांग रहे हैं ये बहुत आवश्यक है हमको सोचना और इससे सीख लेना। वो कहते हैं मोक्षम न, मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए भगवान, तो मोक्ष नहीं चाहते हैं वो, प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं चाहते हैं। नहीं तो हम भगवान के पास जाते हैं तो सबसे पहला क्या मांगते हैं कि मेरा प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, सबसे पहली प्रार्थना हमारी ये होती है कि मेरा लाइफ में ये प्रॉब्लम आज है वो सॉल्व कर दो। तो राधा गोपीनाथ रो बताते कि ये प्रॉब्लम सॉल्विंग एक खुजली के जैसा है, इट इज लाइक ईचिंग। तो भगवान के पास जाओ, जैसे 10वीं कक्षा में हूँ भगवान को बोलोगे, जैसा हमने कई बार किया है, शायद हमारा भूतकाल हमारे सामने आएगा और हम जाके भगवान से कहते हैं कि भगवान 10वीं की परीक्षा है, बहुत कठिन है, बहुत पेपर, मेरा पूरा लाइफ इसके ऊपर डिपेंड है, अच्छे परसेंटेज आएंगे तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा, मेरे माँ बाप खुश होंगे और मेरे को पास कर दो, मैं एक नारियल चढ़ाऊंगा। तो हम जाके नारियल चढ़ाते हैं, तो राधा गोपीनाथ रो बोलते हैं खुजली के समान है, कि हमने गए भगवान के सामने एक बार खुजली की, तो भगवान ने ठीक है खुजा दिया हमको, बोले जाओगे पास हो गए। फिर 12th में गए, वापिस से वही रिपीट लेके गए। तो कई लोग बोलते हैं कि आप रिपीट मत करो, पर हम लोग भी वही सब रिपीट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, वापस रिपीटेशन लेके गए, बोले भगवान अभी मैं 12th में हूँ, 12वीं कक्षा में हूँ, मुझे पास होना है, प्लीज कर दो, मेरा लाइफ इस पे डिपेंड करता है, अच्छे कॉलेज में दाखला मिलेगा, ये होगा वो होगा। भगवान वापस से दूसरी बार खुजली की, भगवान ने दूसरी खुजली मिटा दी। फिर आगे गए बोले बीकॉम में आया हूँ, ये तो बीकॉम तो सबसे इम्पोर्टेंट है, ये करवा दो वो करवा दो, भगवान ने वो भी सॉल्व कर दिया। फिर बोला मेरी शादी नहीं हो रही है, मेरी शादी करवा दो, भगवान ने वो भी शादी करवा दी। फिर मेरे को अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी दिलवा दी। फिर नौकरी दिलवा दी, मेरी पगार बहुत कम है, मेरे को घर नहीं मिलता, मेरे को आबू धाबी जाना है। मैं ठीक है जा बेटा, उधर चले गए। फिर मेरे को बच्चा चाहिए, सब करके मतलब एक एक खुजली करते जा रहे हैं और भगवान वो खुजली को मिटा रहे हैं। तो बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है, ये जो भगवान से मांगते हैं, ये सब खुजली के समान है। और खुजली करते करते क्या होता है, एक चीज हमको रियलाइज नहीं होता है कि हर जगह बार बार सेम जगह पे खुजली करने से क्या होता है, एक नासूर पैदा हो जाता है, एक उधर घाव हो जाता है, और फिर वो घाव भरता नहीं है, बहुत टाइम लगता है उस घाव को भरने के लिए। तो हमको सत्यव्रत मुनि सिखा रहे हैं कि ऐसी प्रार्थना मत करो, भगवान से प्रॉब्लम सॉल्विंग मत मांगो, मोक्ष भी मत मांगो। कई बार प्रॉब्लम करते करते लोग थक जाते हैं, फिर निर्वाण मांगते हैं, वॉइडम, मेरे को शून्य चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, वॉइडिज्म। तो बोलते कि वो भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। और फिर बोलते ठीक है मोक्ष से ऊपर क्या है वो मांगो। कई बार लोग बोलते हैं ठीक है अच्छा मोक्ष तो समझ में नहीं आता है ना, इम्पर्सनलिज्म है, उससे ऊपर कुछ मांगो। क्या है उससे ऊपर? कुंठ मतलब होता है चिंता, एंजाइटी, और वैकुंठ मतलब होता है जो चिंता नहीं है वहां पे। तो बोलते वैकुंठ मांग लो भगवान से। तो वो कहते हैं कि न मोक्षम अवधिम वा, कि मोक्ष से भी जो ज्यादा ऊपर है वैकुंठ वो भी नहीं चाहिए मेरे को, मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, मेरे को वैकुंठ भी नहीं चाहिए। तो बोले ठीक है भैया तेरे को फिर क्या चाहिए? तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने हमको उदाहरण दिया है और हर चीज हम ये शिक्षा अष्टकम से समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामे मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति अहेतु की कोई। भगवान क्या मांग रहे? अहेतु की भक्ति मांग रहे। और वे कहते हैं कि न धनम न जन्म न सुंदरीम। तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा कैसा प्रार्थना कर सकते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ कुछ चीज हम लोग साधकों के बीच में जाके क्वेश्चन पूछते हैं, तो हमारे लेवल का है, हमारे से नीचे के लेवल का आदमी रहेगा उसको जाके कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तेरे हिसाब से ऐसा हो सकता है क्या? नहीं यार मेरे को तो लगता नहीं ऐसा होगा, लेकिन पता नहीं शायद मेरे को ऐसा लगता नहीं ऐसा होगा, ऐसा कोई प्रार्थना कर सकता है क्या? न धनम न जन्म न सुंदरीम ऐसा, मतलब श्लोक बहुत अच्छा लिखा लेकिन न क्यों जोड़ दिया? ये न नहीं लगाना चाहिए, तो बाकी सब ठीक है ना। ये थोड़ा धनम चाहिए, आबू धाबी आए धनम के लिए आए हम लोग, एक जन्म बहुत हो गया, बस बाद में लिबरेट हो जाएंगे, बाद में भगवत धाम चले जाएंगे, और एक सुंदरी बहुत हो गया। ये चैतन्य महाप्रभु ने ऐसा क्यों कहा? तो कई बार हमको ऐसा लगता है। और फिर क्या बोलते हैं? सदा में मनस्य विरासतम किम अन्य, बोलते मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो किम अन्य सोच के कोई एक साधारण व्यक्ति सोचेगा किम अन्य, अरे ऐसा कैसे पूछ रहे हो? किम अन्य मतलब क्या नहीं चाहिए, मैं बताऊं क्या मेरे को क्या चाहिए? बोलते अपना पूरा एक टू डू लिस्ट देते हैं हम लोग पूरा एकदम। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वो उत्कृष्ट है। अगर उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए तो कम से कम प्रयास करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि ठीक है मैं वहां तक जा पाऊं। नहीं तो साधकों के बीच में प्रश्न करके कोई फायदा नहीं है। और किम अन्य मतलब भगवान के सामने जाके हम लोग बोल रहे हैं कि मेरी अभी कोई इच्छा नहीं है भगवान, आगे क्या बोलूं, बस मेरे को मोक्ष भी नहीं चाहिए, वैकुंठ भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। तो बोलेंगे अच्छा मैं बताता हूँ। तो हम लोग जब भगवान के सामने जाते हैं अपना पर्स निकालते हैं, नोट भी होते हैं, चिल्लर भी होते हैं, पहले चिल्लर ढूंढते हैं, छोटा सा चवन्नी मिलता है उसको पहले डालते हैं, फिर दूसरा लिस्ट निकालते हैं टू डू लिस्ट, और उस टू डू लिस्ट में इतना सारा चीज लिखा रहता है, भगवान ये दे दो, भगवान वो दे दो, ये दे दो, वो दे दो, सब चीज मांगते रहते हैं। और कई बार मांगने के बाद भी हमको देने की इच्छा नहीं होती है। तो एक बार एक व्यक्ति काली माँ के मंदिर में गया और उसको बोला कि मेरे का यह काम करवा दो, पास करवा दो, कुछ बिजनेस करवा दो, तुमको एक भैंस भैंसा अर्पण करूंगा। तो उसका काम हो गया लेकिन भैंसा अर्पण नहीं किया। फिर बाद में सेकंड टाइम गया तो काली माँ ने पूछा क्या हुआ भाई, तो इतने टाइम के बाद आया, भैंसा दिया नहीं, बफेलो दिया नहीं। तो बाद में बोला ठीक है एक गोट एक बकरा दे दो। तो बोला ठीक है मैं बकरा दे दूंगा आपको। थोड़े दिन के बाद वापस आया, माँ बोली किधर था यार, मैं ढूंढ रही थी तेरे को, तो बकरा भी दिया नहीं। बोला ठीक है, बोला नहीं बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, रिसेशन है अभी, आपको मालूम है क्या? तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है एक बिल्ली दे दे। तो बोला ठीक है बिल्ली दूंगा। फिर नेक्स्ट टाइम गया, बिल्ली भी नहीं दिया। माँ ने कहा यार बिल्ली भी नहीं दिया, कम से कम चूहा तो दे दे, तेरे को इतना मैंने कुछ दिया है, इतना लोगों का रिसेशन चल रहा है, तेरा अच्छा बिजनेस चल रहा है, चूहा तो दे दे। तो बोला ठीक है मैं चूहा दूंगा। वो देने की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, चूहा भी नहीं दिया। तो बाद में फिर माँ एक्चुअली फ्रस्ट्रेट हो गई, बोली क्या हो रहा है ये। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है एक काम करेगा, तू कुछ भी नहीं दे सकता लेकिन मैं तुझसे कुछ आदान प्रदान करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट सम रेसिप्रोकेशन फ्रॉम यू, एटलीस्ट एक मक्खी तो दे दे, नो गिव मी वन फ्लाई मक्खी। तो बोले लगा माँ से, देखो माँ तुम्हारे यहाँ पे बलि चढ़ती है, इतनी सारी मक्खियां उड़ रही है आजू बाजू में और आठ आठ हाथ है, एक मक्खी पकड़ लो ना, मुझसे क्या मांग रही हो? तो मतलब कोई इच्छा नहीं हमको देने की भगवान को, कुछ भी नहीं, भगवान से प्रॉमिस करते हैं और मुकर जाते हैं इतना, मतलब कि भाई ठीक है ले जाओ। तो तो कहते हैं कि मुझे वहीं पे भी नहीं जाना है, और इदम ते वपुर्ना तो गोपाल बालम, कि मैं यहाँ पे सिर्फ आपके गोपाल बाल की जो छवि है उसको ही देखना चाहता हूँ। सदा में मनुष्य विरासतम की मन्य, मेरी कोई इच्छा नहीं है इस दुनिया के अंदर। मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहे तो कि तो मुझे कोई इच्छा नहीं है। तो वो कहते हैं कि मोक्षम अवधि मैं वैकुंठ भी नहीं जाना चाहता। तो एक भक्त जो होता है वो सिर्फ भगवान की सेवा में लगा रहना चाहता है, उसको ना वैकुंठ से कुछ लेना देना है ना किसी और चीज से लेना देना है। वासुदेव दत्त ने प्रार्थना की थी कि दुनिया भर के जितने भी कर्म है मुझ पे आ जाओ, और प्रहलाद महाराज ने भी कहा था कि जब तक इस दुनिया के सारे लोग भगवत धाम नहीं चले जाए मैं यहीं पे रहना चाहता हूँ, यहीं पे सेवा करना चाहता हूँ। तो एक बार प्रभुपाद जी ने भवानंद प्रभु से पूछा, बोला भवानंद तुम्हारे नाम का क्या अर्थ है? तो भवानंद प्रभु ने कहा, आप लोगों ने भवानंद प्रभु के दर्शन किए? भवानंद प्रभु बहुत जोकिंग वे में कई बार बात करते हैं। तो उन्होंने कहा, अरे प्रभुपाद जी जो राधा कृष्ण के प्रेम में भाव का आनंद अनुभव करे वो भवानंद है। तो प्रभुपाद ने कहा, अच्छा अगर ऐसा होता तो तुम्हारा नाम भवानंद होता था, भवानंद नहीं होता था। भवानंद मतलब क्या? तो बोला ठीक है प्रभुपाद जी आप ही बताओ। तो बोला कि नहीं, भवानंद का मतलब वो है कि भव मतलब ये संसार मटेरियल वर्ल्ड, तो जो इस मटेरियल वर्ल्ड के अंदर आनंद का अनुभव करे वो भवानंद है। तो भवानंद प्रभु का झटका लगा, बोला अरे ऐसा कैसा नाम दे दिया प्रभुपाद, करो प्रभुपाद बस क्या। तो प्रभुपाद ने कहा कि देखो तुम्हारे नाम का मतलब ये है कि गोलोक वृंदावन धाम में सभी तरह की लीलाएं चलते रहती है, सिर्फ एक लीला का अभाव है वहां पर। कौन सी लीला? एनी गेस? गोलोक जो भी लीला चलती है वो सारी की सारी लीला वहां पे चलती रहती है। हम कहते हैं ना इट्स अ परवर्टेड रिफ्लेक्शन। तो गोलोक धाम में सारी लीला चलती रहती है, सिर्फ एक लीला का वहां पर अभाव है। वो कौन सी लीला है? एनी गेस? यस, प्रीचिंग। एक प्रीचिंग ही ऐसी लीला है जो सिर्फ मटेरियल वर्ल्ड में चल सकती है, आध्यात्मिक जगत में प्रीचिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में क्या है, जैसे हमने कहा कि सारे के सारे भगवान के जो नित्य सेवक है पार्षद है वो क्या है, अपने अपने कामों में निपुण और पटु है, एक्सपर्ट। उनको प्रीचिंग करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की इच्छा करने मात्र से पहले ही वो लोग अपना सब कुछ कर रहे हैं, अपना जप कर रहे हैं, अपना सुलामा का पूरा कर लेते हैं, सुबह उठ जाते हैं, सब कुछ जो भी करना रहता है सब कुछ कर लेते हैं। कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आवश्यकता प्रीचिंग की है। और ये प्रीचिंग जो है वो सिर्फ इस भौतिक संसार में ही पॉसिबल है। वो प्रीचिंग आध्यात्मिक जगत में प्रीचिंग की आवश्यकता ही नहीं, देयर इज नो रूम फॉर प्रीचिंग देयर। तो इसके लिए प्रभुपाद ने कहा कि वो व्यक्ति जो इस भाव सागर में प्रीचिंग करते हुए दूसरे व्यक्ति को भगवान की सेवा में लगाने के लिए अगर कोई काम करे और उसमें आनंद ले वो भवानंद है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में रह के भगवान के नाम के लिए प्रीचिंग करे, भगवान के लिए लोगों को बताए, और इसीलिए कृष्ण भगवान ने भगवद गीता के अंत में कहा है कि वो व्यक्ति जो मेरे नाम का प्रचार करता है, मेरे कार्य का, मेरे गुण का, मेरे लीला का, वो मुझे बहुत प्रसन्न है। तो तड़पते जीवों को भौतिक जगत में जो है उन जीवों को भौतिक जगत से मुक्त करने का और प्रचार के माध्यम से केवल इसी संसार में संभव है। और जो भगवान नाम प्रचार करने में आए हैं और उन जीवों को मुक्त करने में आनंद ले वो भवानंद, ऐसा प्रभुपाद जी ने बताया उनको, और वो बहुत खुश हो गए। और इसीलिए गोपी गीत जब है श्रीमद् भागवतम में, उसके अंदर भी गोपियों ने इस चीज की बहुत प्रशंसा की है। और उन्होंने क्या कहा है, तव कथामृतम् तप्त जीवनम् कविभिरीतम् कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदाततम् भूविगृणन्ति जे भूरिदा जना। वो कहती है भूवि गृणंती जे भूरिदा जना। भूरिदा जना मतलब वेलफेयर वर्कर, भूरी मतलब बहुत जो ज्यादा कार्य करते हैं, दा मतलब लोग, भूरिदा जना जन जो है वो। तो जो इस भौतिक संसार के अंदर भगवान के नाम का प्रचार करे, उनको भगवान की सेवा से जोड़े लगाए, वो कौन है? वेलफेयर वर्कर है। और ऐसा कार्य किसने किया इस दुनिया के अंदर बहुत बड़े पैमाने पे? His Divine Grace अभय चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद जी ने ये जो है चैतन्य महाप्रभु भविष्यवाणी करके चले गए वापिस, पृथ्वी दे आचे ज्यादा नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार होय बे मोरो नाम। लेकिन इसका जो नाम को जो आगे बढ़ाने का जो जिम्मा है उसला प्रभुपाद जी ने अपने कंधे पे लिया और विश्व भर में भ्रमण कर करके उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को भक्ति में लगाया जिनका हम सोच भी नहीं सकते। एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था, प्रभुपाद जी की एक डिसाइपल थी जो हॉलीवुड एक्ट्रेस थी, वो डिवोटी बन गई, तो उनका एक आर्टिकल छपा और वो आर्टिकल एक भक्त प्रभुपाद के पास लेके गया, तो उसके अंदर उसका प्रीवियस लाइफ का फोटो छापा था उन लोगों ने, और अभी वो माता जी साड़ी वगैरह पहन के रहती थी, प्रभुपाद के पास सेवा करती थी, तो उसको बहुत शर्म आई, कह रहा ऐसा फोटो कैसे छाप दिया, और ये शिष्य फोटो लेके सीधा प्रभुपाद जी के पास चला गया। सो दिस वॉज द लास्ट थिंग शी वुड हैव इमेजिन कि मेरा ऐसा फोटो कोई मेरे गुरु के पास लेके जाए। तो हम लोग कई बार हमारे गुरु को अपनी करतूत नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन माता जी का वो भाव नहीं था। माता जी सोची कि अरे ऐसा फोटो क्यों बता रहे हैं, वो प्रभुपाद के चले गए, प्रभुपाद बोलने लगे, इतना अप्रिशिएट किया, बोले एक्चुअली कृष्णा हैज सेव्ड यू, कि देखो इतना कुछ होके तुमने सब कुछ छोड़ छाड़ दिया, इतने बड़े एक्ट्रेस थी आप और आपने भगवान की भक्ति में लगे हो तो भगवान कितना लेंगे। और वो माता जी है हर ग्रेस जगत तारिणी माता जी, हु इज वाइफ ऑफ भूरीजन प्रभु। तो प्रभुपाद जी ने देखो किस किस तरह के लोगों को कहां कहां पहुंचा दिया, मतलब अमेरिका जाके ही टर्न ऑल द हिप्पीज इनटू हैप्पी। तो प्रभुपाद जी ने बहुत प्रचार किया है। तो हमारी भी इच्छा होनी चाहिए कि हम प्रभुपाद जी का ये जो दिव्य मिशन है इसमें किसी भी प्रकार से सहायता करें। हो सकता है कई बार हम डायरेक्ट प्रचार ना कर सके, लेकिन अगर हम और कोई भी कार्य कर सकते, जो कुछ भी कार्य प्रकारण किसी भी तरह से प्रभुपाद की मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए अगर फायदेमंद है, हमको वो करना चाहिए। और हमेशा वो सोचते रहना चाहिए, हमेशा मिशन के बारे में सोचते रहना चाहिए कि मैं किस तरह से मिशन को आगे बढ़ाऊं, किस तरह मिशन को आगे बढ़ाऊं, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं, ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताऊं, हर तरह से मतलब छोटे 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 रूप में भी हमको आगे करना चाहिए। तो एनीवे फिर नेक्स्ट श्लोक में वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इदम ते वपुर्नाथ गोपाल बालम, के हे गोपाल बाल की मैं छवि देखना चाहता हूँ। और वो दूर से छवि देख रहे हैं और अभी जूम कर रहे हैं, तो कैमरा होता है हमारे जो उसके अंदर क्या होता है, जूमिंग इफेक्ट होता है, तो वो जूम करके एकदम नजदीक ला रहे हैं, पहले दूर से गोपाल को देख लिया और अभी एकदम नजदीक ला रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, इदम ते मुखाम भोजम अत्यंत नीले मृतम कुंटल स्निग्ध रक्तश्च गोप्या मुहुश्चुंबितं बिंब रक्ताधरं मे मनस्याविरास्तं मलं लक्षराभे। वो कह रहे हैं इदं ते मुखां भोजन अत्यंत नीले, कि भगवान का जो मुखमंडल है वो कैसा है, अत्यंत नीले, बहुत ही मस्त तरह का ब्लू कलर है उनका। और मुखां भोज मतलब अंबोज मतलब होता है कमल, मुखां भोज के कमल के समान भगवान का मुख है। तो इस भौतिक संसार में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिससे भगवान की उपमा दी जा सके, लेकिन भौतिक सृष्टि के अंदर कोई भी चीज अगर बहुत अच्छी है तो वो कमल को माना जाता है। तो भगवान का मुख जो है वो कमल से भी अच्छा है, लेकिन कम से कम इतनी उपमा दी जाती है कि भगवान का मुख कमल के समान है। और वृतम कुंतले, कुंतले मतलब होता है लॉक्स ऑफ हेयर, जो हम जो चोटी बनाते हैं महिला है माता जी, तो जो उनके गूथे होते हैं लॉक्स ऑफ हेयर उसको कुंतले बोलते हैं। वृतम कुंतले स्निग्ध रत्नेश गोप्या, तो ये जो केश है भगवान के वो भी बहुत आकर्षित करते हैं। भगवान का एक नाम केशव है, तो भगवान का एक केशव का मतलब होता है जिसने केशी डिमन का वध किया था, और दूसरा कि जिनके बाल बहुत सुंदर है। तो भगवान का सब कुछ सुंदर है। अधरम मधुरम वदनम मधुरम पाणिर मधुरो पादो मधुरो, तो इस तरह से महाप्रभु वल्लभाचार्य ने वर्णन किया कि भगवान का हंसी, भगवान का मुख, भगवान का सब कुछ मधुराधिपते अखिलम मधुरम, कि भगवान का सब कुछ मधुर है। तो ये गौरांग प्रभु जब लेक्चर दे रहे थे उसमें ये भगवान के बालों के बारे में बता रहे थे कि किस तरह भगवान के बाल की महिमा है। तो लखनऊ में एक मुशायरा चल रहा था, तो किसी ने गौरांग प्रभु को बताया था कि राजेंद्र अग्रवाल उनके मित्र थे, उन्होंने बताया था कि वो मुशायरा चल रहा था, मुशायरा मतलब शेरो शायरी जहां पर वाह 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 चलता रहता है। तो वहां पर चल रहा था तो सारे लोग आ रहे थे, और एक एक्चुअली ब्राह्मण परिवार के व्यक्ति थे, उनको किसी तरह शेरो शायरी में इंटरेस्ट हो गया, तो वो भी वहां पे लग गए जाके। तो वहां पे जिसने आयोजन किया था उन्होंने कंडीशन रखा था कि तुम जो भी शेर कहोगे उसके बाद एक लाइन बोलनी है, काफिर है वो जो कायल नहीं इस्लाम के, कि मतलब काफिर मतलब नास्तिक के, जो इस्लाम को नहीं मानते वो काफिर है, ऐसा करके उन्होंने कह दिया। तो बाद में ये जो व्यक्ति थे उन्होंने कहा अरे मैं ऐसा कैसे कह दूं, ऐसा तो मैं नहीं कह सकता। तो फिर उन्होंने एक श्लोक की रचना की और उन्होंने कहा कि लाम से गेशु है मानिंद मेरे घनश्याम के, काफिर है वो जो बंदे नहीं इस्लाम के। मतलब उन्होंने कहा कि लाम मतलब लामड़ा की तरह से होता है, तो बोले भगवान के बाल जो है वो लाम के जैसे हैं। और उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति भगवान के इस बालों को नहीं मानता है वो काफिर है। तो जो भगवान को और भगवान के नाम में विश्वास नहीं रखता वो नास्तिक है। और आगे कह रहे कि मुह चुंबितम बिंब रक्ता धर्म में, कि भगवान का जो मुख है वो कैसा लग रहा है कि बिंब फ्रूट की तरह है। क्यों? क्योंकि भगवान का जो गाल है वो बार बार गोपियों के द्वारा और यशोदा माता के द्वारा चुंबित किया जा रहा है, वो लोग चूम रहे उसको। तो चूम चूम के उनके जो गालों की होंठों की लाली है वो भगवान के गाल पे लग रही है और वो एकदम बिंब फ्रूट के जैसे दिख रहे हैं, तो वो एकदम जूम करके बता रहे हैं। तो कई बार हम अगर किसी को देखना चाहते हैं तो बहुत नजदीक से जाके देखना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि मैं उस गोपाल को तो देख रहा हूँ लेकिन उस गोपाल के चेहरे को देख रहा हूँ जो अत्यंत नीला है, जिसके ऊपर बहुत अच्छे से केश है, काले घले घने घुंघराले बाल, और उन बालों के बीच में ये जो मुख है इस मुख के ऊपर लाल कलर का बिंब फ्रूट की तरह ये जो लालिमा है उसको देख के मैं अति प्रसन्न हो रहा हूँ। तो इस तरह से भगवान का दर्शन करते हैं। तो भक्त लोग बताते हैं कि हम जब भगवान का दर्शन करने भी जाए तो किस तरह से कितने प्यार से भगवान का दर्शन करने चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं फटाफट फटाफट भगवान का ऊपर नीचे देख के चले जाते हैं। तो भगवान का पहले पैरों से शुरुआत करनी चाहिए कि पहले भगवान के पैरों का दर्शन करके फिर धीरे 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 भगवान के पैरों से ऊपर उठ के उनके घुटने तक आना, फिर उनके कमर तक आना है, और कमर से आके फिर उनकी छाती, और छाती से फिर उनके गले, और गले से फिर भगवान के मुखारविंद का दर्शन करना है, और बड़े ही प्यार से भगवान का दर्शन करने। और ऐसा दर्शन करने मात्र से क्या फायदा होता है कि हमारा जो भौतिक वस्तुओं के प्रति जो आकर्षण है वो धीरे धीरे कम होता जाता है। एक व्यक्ति जो भगवान का श्रृंगार करता है, भगवान के अंगों को सजाता है, भगवान के अंगों को देखता है, तो दूसरे चीजों में देखने की जो हमारी वृत्ति होती है वो थोड़ी थोड़ी कम होती जाती है। तो इस तरह से हमको इसमें बोल रहे हैं। और आगे के दो श्लोकों में और फिर अपने उद्धार की बात ला रहे हैं और वे कह रहे हैं
नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जाला भीमग्नम कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु गहाण शमामद्य मे अक्षि दृश्य।
वो कहते हैं कि हे देव मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नमो देव दामोदर अनंत विष्णु। तो कई बार भगवान का इसके अंदर कई अलग अलग शब्दों से संबोधन हुआ है, जैसे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रभु, इतने सारी चीजें उन्होंने कही कही है और बहुत प्रकार से भगवान का संबोधन कर रहे हैं। और सत्यव्रत मुनि इस तरह से बताते हैं कि समझो जैसे एक भक्त के बीच में और भगवान के बीच में वार्तालाप चल रहा है। तो सत्यव्रत मुनि उनसे कुछ वर मांग रहे हैं। तो कई बार क्या होता है कि जब कुछ मांगने की बात होती है तो हम लोग थोड़ा पीछे हट जाते हैं। एक बार एक अंकल ने अपने भतीजे को फोन किया और कहा भतीजा तुम कैसा है, क्या है, ये है वो है। तो सब कुछ भतीजा ने बोला बरोबर बरोबर सब कुछ चल रहा है। फिर भतीजा ने अंकल से कुछ पैसे मांगे, बोले अंकल मेरे को थोड़े पैसे की जरूरत है, आप पैसे दे दो। बोला क्या बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है, फोन का लाइन क्लियर नहीं है। तो बोला नहीं मैं कह रहा हूँ थोड़े पैसे की जरूरत है मेरे को दे दो। बोला सुनाई नहीं दे रहा है मेरे को बरोबर से, क्या बोल रहे हो। तो इस तरह से चलते रहा। तो अंकल के बाजू में एक आदमी खड़ा था, बोला अंकल मेरे को सुनाई दे रहा है तुम्हारे को क्यों सुनाई दे रहा है। बोला तुम्हारे को सुनाई दे तो तू दे देना पैसा। तो इधर भगवान से वर मांगने आया तो भगवान भी दो कदम पीछे हट गए। बोले अच्छा वर मांगने आ रहा है, मेरे को थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कैसे इंटेंशन से कौन कैसे आ रहा है। क्योंकि भगवान भक्ति किसी को देते नहीं है, बहुत मुश्किल से देते हैं, मुक्ति उक्ति दे देते हैं। तो मांगने के लिए सत्यव्रत मुनि आगे आए, भगवान थोड़ा पीछे हट गए। तो गोपाल बोलेगा मैं क्या करूं, मैं तो छोटा बालक हूं। तो बोलते नहीं बालक नहीं हो, नमो देव दामोदर अनंत विष्णु, तुम विष्णु हो। तो बोलेगा नहीं मैं तो छोटा बालक हूं, मैं क्या करूं, माता ने मेरे को बांध दिया, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो बोला नहीं तुम अनंत हो, तुम विष्णु हो, तुम सभी देवताओं के स्वामी हो, सब कुछ हो। तो भगवान कहेंगे ठीक है ये बात मैं मान लेता हूं, लेकिन मुझे देवता से थोड़ा परमिशन लेना पड़ेगा क्योंकि वर देवता लोग देते हैं, तो मैं उनसे मांग के फिर तुमको कुछ दूंगा। तो बोले कि नहीं तुम प्रभो हो। प्रभो मतलब के कर्तुम अकर्तुम सदा कर्तुम एवं प्रभो, मतलब सब कुछ उनके हाथ में होता है। बोला तुमको देवता से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप का वरदान दिया था तो उसने बहुत कुछ मांग के अपना कॉम्प्रिहेंसिव लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बनाई थी, लेकिन भगवान ने आके उसको चार्जित कर दिया, उसको खत्म कर दिया वहीं पे। और खत्म करने के बाद आके फिर नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी के सामने देखा और ब्रह्मा जी को डांटा बहुत जबरदस्त। बोला तुम्हारे चार सिर है और चार सिर में चार प्रकार की बुद्धि है, चार बुद्धि का बराबर प्रयोग करके नेक्स्ट टाइम कोई वर देना मेरे से पूछ लेना, समझा गया। ऐसा करके ब्रह्मा जी को डांट दिया। तो बोले कि आप प्रभो, आप तो आपने तो ब्रह्मा जी को भी डांटा है मैं जानता हूँ।
तो बोले कि ठीक है वो सब बात है, लेकिन अभी तक क्या करूं, मैं तो बंधा हुआ हूं, मेरे को तो बांध दिया है माता ने, मैं क्या करूं, मैं तेरा कैसे वर दे सकता हूं। तो उन्होंने कहा कि तुम बंधे हो लेकिन तुम सबसे ज्यादा मुक्त हो। और ऐसा एग्जाम्पल यहां पर आया है कि भगवान किसी को मुक्त कर रहे हैं और खुद बंधे हुए हैं। क्या होता है कि जेलर जो है वो जेल से बाहर रहता है और कैदी अंदर रहता है। तो अगर कैदी जो बंदी है उसको मुक्त करना है तो कौन मुक्त कर सकता है, जेलर मुक्त कर सकता है। एक कैदी दूसरे कैदी को मुक्त नहीं कर सकता, वो खुद ही बंधा हुआ है, वो बेचारा क्या मुक्त करेगा। तो वैसे ही क्या हमारी हालत है कि हम सब भौतिक जगत में बंधे हुए हैं, तो प्रभुपाद जी और गुरु महाराज जैसे मुक्त जीव आते हैं और हमको फिर वहां से बंधन से छुड़वाते हैं। तो बोले कि जेलर जो है वो तुमको छुड़ा सकता है, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल हमने देखा है कि हिस्ट्री के अंदर कि जहां पर एक मुक्त आदमी है वो दूसरे मुक्त एक बद्ध आदमी है जो दूसरे बद्ध आदमी को मुक्त कर रहा है, ऐसा हिस्ट्री में कम देखने मिलता है। ये दामोदर लीला में ऐसा हुआ है। क्या कौन बद्ध है, कृष्ण बद्ध है, और दूसरे कौन बद्ध है, नलकुवेर और मणिग्रीव, वो दोनों बद्ध है। तो एक बद्ध जो परमात्मा है वो जीवात्मा को मुक्त करते हैं। तो हालांकि कृष्ण बंधे हुए हैं, तो गजेंद्र के केस में वैसे कि उन्होंने मुक्त कर दिया, इसलिए वो कहते हैं मुक्ताय भूरि करुणाय नमो ललाय। जब वो प्रार्थना करते हैं गजेंद्र जी, तो कहते हैं मुक्ताय कि आप मुक्त हो, आपको तुरंत आना चाहिए मेरे को मुक्त करने के लिए। तो बोले कि आप अगर बंधे हुए भी हो तो भी मुक्त कर सकते हैं। तो फिर भगवान कहे ठीक है, इतना सब कह रहा है लेकिन मेरे को बहुत दूर से आना पड़ेगा, मैं बहुत दूर रहता हूँ वैकुंठ के अंदर गोलोक में। तो बोलते नहीं जी, अनंत, आप अनंत हो, आप सर्वव्यापी हो, सब जगह हो, तुरंत आ सकते हो, आपको आने के लिए टाइम नहीं लगेगा। तो इस तरह से भगवान जो जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं सत्यव्रत मुनि उस आर्ग्यूमेंट को वापस उसका जवाब दे रहे हैं और भगवान को किसी तरह प्रार्थना कर रहे हैं और उसको प्लीज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाद में फिर आगे भगवान कहेंगे ठीक है यार, इतना कुछ कह दिया, अभी स्वीकार करता हूं, लेकिन मुक्त करने के लिए भी स्टैंडर्ड होता है मेरा, मैं हर कोई अरे गरे नतु खैरे को मुक्त नहीं करता। तुम्हारा स्टैंडर्ड है क्या, बहुत गुजरा हुआ गया गुजरा आदमी, उसका ऐसे आदमी को मैं मुक्त नहीं करता, मैं अच्छे अच्छे आदमी के साथ डीलिंग करता हूँ। तो कई बार हम लोग भी डीलिंग करते टाइम अपना छांट छांट के डीलिंग करते हैं, नहीं मैं इसके साथ ही डीलिंग करूंगा, इसके साथ ही डीलिंग करूंगा, यहीं पे करूंगा, वहीं पे करूंगा, ये भक्त से करूंगा, वो भक्त से नहीं करूंगा, यही। तो कई बार हम हमारा डीलिंग करने की कोशिश करते हैं इस तरह से। तो फिर सत्यव्रत मुनि अभी सोच रहे कि यार क्या करूं, मैं तो मतलब अपने आप को बड़ा तो नहीं समझ रहे। सत्यव्रत मुनि क्या सोच रहे कि मैं भी तो गिरा हुआ ही हूं। तो फिर वो सोच रहे हैं और बाद में वो बोलते हैं कि नहीं भगवान, ऐसा नहीं है कि इतिहास के अंदर तुमने गए गुजरे लोगों का उद्धार नहीं किया है, मेरे पास अकाउंट है, मेरे को मालूम है तुमने कैसे कैसे लोगों का उद्धार किया है। और फिर उन लोगों का भगवान एग्जाम्पल दे रहे हैं, कहते ऐसे लोगों का अगर तुमने उद्धार कर दिया है तो मेरा उद्धार क्यों नहीं करोगे भगवान, मेरा भी करो। तो आगे कहते हैं, ऐसे लोगों का वर्णन करते हैं, कुबेर आत्म जो बद्ध मूर्त वयद्वान त्वया मुचितो भक्ति भजो कृतो च तथा प्रेम भक्ति स्वकाम्य प्रयच्छ नमोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह। तो कहते हैं कि मैं कई ऐसे उदाहरण जानता हूँ भगवान इतिहास के अंदर जिन पतित लोगों का आपने उद्धार किया है, और वो कौन है, कुबेर आत्म जो, वो कुबेर के दो पुत्र है, कौन, मणिग्रीव और नलकुबेर। वो क्या कर रहे थे, मंदाकिनी गंगा में नहा रहे थे नंगे होके अप्सराओं के साथ, बहुत नशे में धूत थे। तो उन्होंने कोई तपस्या की थी क्या, सत्यव्रत मुनि बोलेंगे अच्छा उन्होंने कोई तपस्या की थी क्या आपके लिए, सोलह माला का जप किया था क्या, चार नियम का पालन कर रहे थे क्या, मैं तो सोलह माला भी कर रहा हूँ, चार नियमों का पालन कर रहा हूँ, केवल प्रसाद ही खाता हूँ, चार बार खाता हूँ अलग बात है लेकिन प्रसाद ही खाता हूँ, तो इतना सब मैं कुछ कर रहा हूँ। और कई बार अभी विष्णु पंचक चल रहा है, बोला मैं तो बहुत ऑस्टेरिटी कर रहा हूँ, खाली फ्रूट खा रहा हूँ, खाली दूध पी रहा हूँ, फ्रूट्स और रूट्स खा रहा हूँ, और कुछ नहीं खाता मैं। तो देखो, तो कहते हैं कि देखो ऐसे ऐसे लोगों का करते हो और मैंने तो चाय पीना भी छोड़ दिया, कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मेरा तो उद्धार करो, ऐसे नशे में धूत लोगों का आपने उद्धार कर दिया, कुबेर आत्म जो, क्या कर रहे थे वो, कुछ भी नहीं, ऐसे लोगों को नारद मुनि ने श्राप दिया और उनका उद्धार कर दिया, दारू पीते हुए व्यक्ति को जो नशे में धूत थे उनका आपने उद्धार कर दिया, तो मैं तो चार माला कर रहा हूँ, अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ। और फिर जैसे चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने कैसे लोगों का उद्धार किया था, जगाई मदाई, चैतन्य महाप्रभु ने आदेश दे दिया, क्या कहा, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञा जाओ करी हो प्रकाश प्रति घरे घरे जाओ करो ही शिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा मांगो ही भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो जाओ, और नित्यानंद प्रभु जाके जगाई और मदाई का उद्धार कर दिए, चैतन्य महाप्रभु ने उनका उद्धार किया। तो कोई सोच सकता है कि यार मैं तो जगाई मदाई इतना पतित नहीं हूँ, मौसम पतित प्रभु, लास्ट वर्स है, तो मौसम पतित प्रभु ना पाई भवार, तो क्या मेरे जीवन में भी अवश्य आशा की किरण है, तो हमको हमेशा अपने जीवन में आशा की किरण रखनी चाहिए, वी शुड होप अगेंस्ट होप। तो फिर बाद में आगे और वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, तो त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतजो, कि मुझे वो भक्ति दे दो, और कैसी भक्ति चाहिए, तथा प्रेम भक्ति। वो कह रहे हैं, इधर स्पेसिफाई कर रहे हैं कि भक्ति के बहुत टाइप के प्रकार हो सकते हैं, कोई मानेगा तो, जैसे घी होता है, घी के बहुत प्रकार होते हैं, देसी घी, शुद्ध घी, डायनामिक्स, डालडा घी, ये घी, वो घी, होते नहीं, मेरे को वो वाला चाहिए। कौन सा वाला? वो वाला भक्ति जो आपने कुबेर के बच्चों को दिया था, आत्मजो को दिया था, वो भक्ति चाहिए मेरे को। तो मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्ष ग्रहों में स्थित दामोदर, वापिस कह रहे हैं कि मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए भगवान, मैं मांग रहा हूं, तो पहले आपको कहता हूं कि मेरे को यही चीज चाहिए, ऐसा अगर दोगे तो ही दो, नहीं तो मेरे को कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान को कह रहे हैं कि मैं ये चीज आपसे मांग रहा हूं कि मेरे को भक्ति दो, नहीं तो कई बार क्या है कि हम लोग भगवान से मांगने जाते हैं और कुछ और मांग बैठते हैं। एक बार बुढ़िया के सिर पे गट्ठर था, उठाया नहीं जा रहा था, उसने उठा के नीचे रखा, एक जेलर गाड़ी लेके आया और उसको बोला, अरे माँ जी क्या हेल्प करूं, तो बोला बेटा ये गट्ठर उठा के मेरे सिर पे रख, और फिर वो चलने लगी भार उठा के। वो कह सकती थी कि गाड़ी में गट्ठर रख, मेरे को भी गाड़ी में बिठा और हम लोग दोनों चलते हैं। तो हमको मांगना क्या चाहिए, तो वो कह रहे हैं कि तथा प्रेम भक्ति, वो वाली भक्ति चाहिए, दूसरा वाला नहीं चाहिए, वही चाहिए मेरे को। तो भले हम अयोग्य हो, लेकिन हमको इच्छा बहुत बड़ी रखनी चाहिए। इसलिए महाराज कई बार कहते हैं कि वी शुड होप अगेंस्ट होप, एटलीस्ट नो वहां तक पहुंचूंगा, नहीं पहुंचूंगा अलग बात है। अब आगे के श्लोक में वो कंक्लूड कर रहे हैं, और हम भी कंक्लूड करेंगे 5 मिनट। तो कंक्लूजन में कह रहे हैं, नमस्ते स्तु दामने स्फुर दीप्ति धामने तदीयो दरायाथ विश्वश धामने नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकाय तदीय प्रियाय नमो नंद लीलाय देवाय तुभ्यं। तो कहते हैं नमस्ते, पहला शुरू किया नमामि से, एंड किया नमस्ते से, तो नमस्ते कह रहे कि वापिस मैं प्रणाम कर रहा हूँ किसको, नमस्ते स्तु दामने, उस दाम को, उस रज्जु को, उस रस्सी को, उस रोप को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जो स्फुर दीप्ति धामने, बहुत ज्वलमान वो रोप है जिसने भगवान के उदर को बांध दिया। और फिर मैं प्रणाम करता हूँ त्वदीय दरायाथ विश्वस्य धामने, कि उस उदर को मैं प्रणाम कर रहा हूँ जिस उदर के अंदर सारी सृष्टि समाहित है, भगवान के उदर के अंदर सब कुछ भरा हुआ है। तो कहते हैं कि उस रज्जु को प्रणाम है जिसने आपको बांध दिया, क्योंकि भगवान को कौन बांध सकता है, और फिर उस उदर को बांध दिया जिसके अंदर सारी सृष्टि है, तो मैं इनको प्रणाम करता हूँ। और ये प्रणाम करने के बाद, इतना सब कुछ लिखने के बाद, सत्यव्रत मुनि सोच रहे हैं, यहाँ पे क्या सोच रहे हैं, वो कहते हैं यार मैंने दामोदर अष्टकम लिख तो दिया, लेकिन कुछ गलती हो गई होगी तो क्या होगा। तो कई बार क्या होता है कि हम लोग कोई किसी चीज को करते हैं और थोड़ी छोटी मोटी गलती की वजह से हमको बहुत बड़ा भुगतान भुगतना पड़ता है। कई बार भक्ति में भी हमारे से गलती हो जाती है, फिर होते रहे लीडर कुछ बोल देगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो सोच रहे हैं। और क्या होता है कि वो पिटीशन कर रहे हैं भगवान से, भगवान की तारीफ कर रहे हैं, उनसे वर मांग रहे हैं, पिटीशन सबमिट कर रहे हैं। और कई बार हमने देखा है जब पिटीशन सबमिट होती है तो छोटे मोटे ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाती है, राइट, स्मॉल ग्राउंड पिटीशन आर रिजेक्टेड। वो बोलेगा अरे ये हस्ताक्षर बराबर नहीं किया, इधर करना था इधर क्यों किया, ये राइट थंब मारना था लेफ्ट थंब क्यों मारा, खलास निकालो यहाँ से, या लगो निकालो यहाँ से, कुछ नहीं कर सकते, वीजा कई बार हमारा रिजेक्ट हो जाता है। तो बोलते हैं यहाँ पे क्या कर दिया तुमने, स्टेपलर यहाँ पे बराबर नहीं मारा, इधर स्टेपलर मारना था, अभी इसको पिन क्यों लगाया, पहले नाम क्यों लिखा, नोटरी करने जाते थे, बोलते मैं गया था एक बार तो पहले नाम लिख के गया, बोला मेरे सामने नाम, मेरा ही नाम है यार, नहीं मेरे सामने नाम लिखना था, दूसरा पेपर करना पड़ा। तो छोटे मोटे ग्राउंड पे रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सत्यव्रत मुनि सोच रहे कि यार ऐसे छोटे मोटे ग्राउंड पे मेरा रिजेक्ट नहीं होना चाहिए, इतना मुश्किल से पिटीशन लिखा है, इतने श्लोक लिखे हैं। तो फिर वो बोलने लगे कि यार मैं तो श्रेष्ठ भक्त नहीं हूँ, पिटीशन रिजेक्ट होने के प्रोबेबिलिटी इज हाई, बहुत ज्यादा चांस है कि मेरा पिटीशन रिजेक्ट होगा, तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर देता हूँ अलग से कि मेरा पिटीशन रिजेक्ट नहीं होए। तो हम लोग जो गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं तो क्या करते हैं, साथ में कुछ लेके जाते हैं, इसलिए मराठी में कहते हैं कायदिया नहीं चाला, कायदिया मतलब नो गो अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट कायदिया आनी चाला मतलब कुछ दे और आगे बढ़ो, तो कुछ देना पड़ता है। तो प्रसाद वो होता है जो ऊपर से देते हैं, और महाप्रसाद वो होता है जो नीचे से देते हैं। तो थोड़ा नीचे से सत्यव्रत मुनि उसको कुछ दे रहे हैं, बोलते हैं कृष्णा अभी तुमको मैं दे देता हूँ, तो वो महाप्रसाद दे रहे हैं और कृष्ण का वीकनेस ढूंढ रहे हैं, और कृष्ण का वीकनेस क्या है, राधा रानी। तो सोचते हैं अगर राधा रानी के बारे में मैं कुछ लिख दूंगा, क्योंकि कई बार लोग सोचते हैं कि यार ये दामोदर लीला कृष्ण के घर में चल रही है, माता आगे पीछे भाग रही है, राधा रानी बीच में कहां से आ गई। मैं कई लोग ऐसा सोचते हैं कि दामोदर लीला में मतलब किधर राधा रानी किधर बीच में आ गई है। तो सोचते हैं कि नहीं ये सही है, अगर मैं राधा रानी का नाम लिखूंगा तो मेरा पिटीशन रिजेक्ट नहीं होगा। तो भगवान को क्या कहते हैं, कि देखो भगवान मैंने इतना जो 7 वर्ष लिखा है और 2 लाइन लिखी है वो सही होगा या नहीं होगा मालूम नहीं, लेकिन एक चीज सही है कि आपके राधा रानी प्रिय है कि नहीं। भगवान बोलेंगे यस वो तो प्रिय है। तो कहते हैं कि नमो राधिकाई त्वदीय प्रियाय, कि राधा रानी आपको बहुत प्रिय है। तो ये पिटिशन बोनाफाइड है और इसके अंदर एक स्टेटमेंट लिख दिया उन्होंने कि भगवान को राधा रानी प्रिय है और एक कवर बना के दे दिया, उसके ऊपर राधा रानी का नाम लिख दिया। तो भगवान राधा रानी का नाम लिख के वो कवर फिर सारा का स्टैंप स्टैंप मार के पिटीशन को पास कर लेंगे। तो बोलते कि मेरा केस सील हो गया, अभी लॉक कर दो, मुहर लगा दो इसके ऊपर। तो राधा रानी का नाम लिख दिया और वो आगे जाके और भी कह रहे हैं, मतलब महाप्रसाद दे रहे हैं और ऊपर से और भी कुछ थोड़ा महाप्रसाद दे रहे हैं। बोलते हैं नमो राधिका, एक तो कौन प्रिय है, राधा रानी प्रिय है, और दूसरा क्या प्रिय है, रासलीला बहुत प्रिय है। नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यं, तो क्या भगवान को लीला बहुत प्रिय है। तो भगवान को राधा रानी प्रिय है, भगवान को लीला भी प्रिय है, दोनों चीज प्रिय है। तो अगर राधा रानी का नाम यहाँ पर आ गया तो उद्धार हो जाएगा हमारा। तो बोले दामोदर अष्टकम के अंदर अगर जो कुछ भी कमी रह गई है वो राधा रानी का नाम लेने से वो कमी पूरी हो गई। श्रीमती राधा रानी की
जय।
तो सनातन गोस्वामी पाद अपनी दिग्दर्शनी जो टीका है वो अंत करते हैं और उसमें कहते हैं कि भोजन जब परोसा जाता है तो मीठा जो है वो सबसे पीछे आता है, एंड सम पीपल हैव स्वीट टूथ, तो मीठा बाद में दिया जाता है। तो ये जो पूरा है ये पूरा मस्ट मेन कोर्स दिया है सत्यव्रत मुनि ने और पीछे से डेजर्ट दिया है जिसमें राधा रानी का नाम लिखा है। तो ये भगवान की लीला जो है वो अनंत है, ये भौतिक लीला नहीं है, चित्त के शुद्धिकरण को करती है। और सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं कि जो इस लीला को रोज गाएगा, दामोदर अष्टकम को रोज गाएगा प्रेम से, वो क्या होगा, वो भगवान उसको उसी तरह मुक्त कर देंगे इस भौतिक संसार से जिस तरह से उन्होंने नल कुबेर और मणिग्रीव को किया था, और वो हमको हमारी प्रेम भक्ति देंगे। श्रीमती राधा रानी की
जय,
यशोदा माई की
जय,
श्री कृष्ण भगवान की
जय,
श्री चैतन्य महाप्रभु की
जय,
श्रील प्रभुपाद की
जय,
गुरुदेव की
जय,
अनंत कोटि वैष्णव वृंद की
जय,
गौर प्रेमानंदे। थैंक यू वेरी वेरी मच। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।